रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है।
शांति। अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि की ये कविता है, अ साम ऑफ लाइफ। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, फॉर द सोल इज डेड दैट स्लंबर्स, एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust thou returnest, was not spoken of the soul. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act, that each tomorrow finds us farther than today. Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still life, muffled drums and beating, funeral marches to the grave. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing, leave behind us footprints on the sands of life, footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn And she pricked, "Brother, seeing shall take heart again. Let us then be up and doing. With a heart for any fate, still achieving, still pursuing. Learn to labor and to wait. Mahat jano ka jeevan pratipal deta hai sandesh sabhi ko. Hum bhi mahima mein kar sakte hai apne chote se jeevan ko. Honge jab vida jagat se hum padachinna chhod kar jayenge. Besamay baluka par ankit chir din tak dekhe jayenge. Thak kar yadi hua nirash kahin shayad koi chalta rahi. Un padachinno ko dekh vaha pa jaye abhinav asha hi. Atayeva chalo hum jud jaye apna bhavishya khud gadne ko. Seekhenge avirat shram karna unnati ki seedhi chadne ko. Let us then be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still perceiving. Learn to labor and to wait. Jeevan mahasangram hai, utar chadav hai, aur jab jab hum gire tab tab phir uthna, phir prayatn karna, phir khade ho jana, kabhi na harna. Ye satat aviram chalne wala ek sangharsh hai, aur isme hame apne padchinna chhod kar jane hain, taki thak kar yadi hua nirash kahin koi shayad koi chalta rahi. Hamare padchinno ko dekh पा जाए अभिनव आशा ही, उसे फिर से कोई आशा मिल जाए, फिर से उसके जीवन में कोई क्रांति आ जाए. प्रतिपल सजगता, हर समय जागरूकता, क्योंकि एक पल की बेहोशी हमें गिरा देती है. Everlasting. तुम्हारी third stage कैसी होनी चाहिए? Everlasting. एक है जानना, दूसरा है मानना, और तीसरा है चलना. वो है तीसरी stage. श्रुत प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा, और तीसरा भावनामयी प्रज्ञा. प्रज्ञा के तीन आयाम. एक, सुना है बहुत अच्छा लगा, पर केवल सुनने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सुनना चेतन मन के स्तर पर हो रहा है. चिंतनमयी प्रज्ञा, हमने उस पर चिंतन किया, मनन किया, गहन विचार सागर में खो गए, पर केवल चिंतन से और केवल मनन करने से परिवर्तन नहीं आएगा. चिंतनमयी प्रज्ञा, जब तक हम मन की अतल गहराइयों में नहीं पहुंचते और वहां पर जमी हुई गंदगी को नहीं निकालते, वहां पर जो अंधकार फैला हुआ है सदियों से, उसको नहीं हटाते, तब तक ये कार्य अधूरा है. और वो कार्य है भावनामयी प्रज्ञा का, और इसी को, थर्ड स्टेज को क्या करना है, एवरलास्टिंग बनाना है। इसी भावनामय प्रज्ञा को इस संसार में चार प्रकार के मनुष्य हैं। महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन पूरा करते हैं, कौशल देश का राजा प्रसेनजीत बैठा है, पूछता है कि आपने अभी अभी जो चार प्रकार के मनुष्य केवल कहे वो कौन से मनुष्य है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले प्रकार के मनुष्य वो है जो अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं, जो तिमिर में है, डार्कनेस में है और डार्कनेस की तरफ जाते हैं। दूसरे वो जो अंधकार में है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं, तिमिर में है, तिमिर से ज्योति की ओर जाते हैं। तीसरे प्रकार के वो मनुष्य है जो ज्योति में है और ज्योति से अंधकार की ओर जाते हैं, प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। और चौथे प्रकार के मनुष्य है जो ज्योति में है और ज्योति से ज्योति की ओर जाते हैं। प्रसेनजीत पूछता है, इसको समझाए ये क्या है। विस्तार से इनका वर्णन करें। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तिमिर से तिमिर में जाने वाले वो लोग हैं जो शूद्र कुल में जन्मे हैं, छोटी जाति में जन्म लिया है और उसके बाद भी और विकर्म करते हैं और पाप करते हैं। वो अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य है तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाले, जिन्होंने छोटी जाति में जन्म लिया है परंतु अब प्रयत्न कर रहे हैं सत कर्म करने का। तीसरे प्रकार के मनुष्य है जिनमें उच्च कुल में जन्म लिया है, जो ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ है, समाज उन्हें श्रेष्ठ दृष्टि से देखता है, समाज की परिपाटी में वो महान है, पर ऐसे महान कुल में जन्म लेने के बाद भी जो विकर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो ज्योति से तिमिर की ओर जाते हैं। और फिर ऐसे सत्पुरुष भी है, वो कौन, जो ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाले हैं, जिन्होंने महान कुल में जन्म लिया है, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है और श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, महान कर्म कर रहे हैं। उनका एक एक कर्म संसार के लिए आधार है। आज की इस मुरली में बाबा ने कहा, तुम एक एक इंजन हो, तुम्हारे पीछे डिब्बे हैं, तुम्हारे पीछे संसार की सारी आत्माएं हैं। ये वो लोग हैं जो ज्योति से ज्योति की ओर जाते हैं, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं, कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर जाते हैं। द गोल इज टू गो फ्रॉम लेसर लाइट टू हायर लाइट। दिस इज नॉलेज। ज्ञान अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना नहीं, परंतु कम प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर जाना, कम ज्योति से अधिक ज्योति की ओर जाना। ये चार प्रकार के मनुष्य हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी कभी कहा है, वो बैठे थे और देख रहे थे एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा है, उसके जाल में कुछ मछलियां आ गई है। उन्होंने कहा कि मछलियां तीन प्रकार की है, पहली वो जो फंस गई है और प्रयत्न कर रही है उस मछुआरे के जाल से बाहर निकलने का, वो पहले, दूसरी वो जो फंस गई है पर अब स्वीकार कर लिया है यही ठीक है, अब आगे कुछ हो नहीं सकता, यही संसार है, यही जीवन है, अब तो बंध गए। और तीसरे वो है, तीसरे प्रकार की मछलियां, जो उद्यम से, परिश्रम से, श्रम से, पुरुषार्थ से उस जाल से बाहर निकल आती है। तो मनुष्य भी तीन प्रकार के हैं, पहले वो जो फंस गए परंतु अब क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ करके निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, भले असफल ही क्यों ना हो जाए। शूद्र को पाकर अगर सफलता भी मिल जाए तो वो असफलता है, और विराट को पाकर, विराट की आकांक्षा में यदि असफलता भी मिले तो भी वो आत्मा धन्य है। तो पहले प्रकार की वो आत्माएं हैं जो फंस तो गई है पर अब निकलने का पुरुषार्थ कर रही है, पर निकल नहीं पा रही है, बहुत प्रयत्न कर रही है परंतु हम होंगे कामयाब एक दिन और होंगे। दूसरे प्रकार की मनुष्य वो है जो फंस गए हैं और अब स्वीकार कर लिया है कि यही जीवन है, यही सब कुछ है, अब इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। जिनको पुरुषार्थ करना है करे, जिनको फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, वो बनते रहे। हम जहां हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे सदियों से, हम वही करेंगे, आत्मा समझकर बाप को याद, इससे ज्यादा हमें और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। तीसरे प्रकार के वो है जो निकल जाते हैं बाहर कैसे भी करके, क्योंकि प्यास इतनी ज्यादा है, मुक्ति की प्यास, निकलना प्यास पर निर्भर है। जिसकी प्यास तीव्र है, द इंटेंस डिजायर कि मुझे मुक्त होना है, क्योंकि देखा बंधन बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ा है। एक भक्त बाजू में कहा बैठा है, वो कहता है श्री रामकृष्ण से कि चौथे प्रकार की मछलियां भी होती है और चौथे प्रकार के मनुष्य भी होते हैं, वो कौन से, वो जाल के इर्द गिर्द भी नहीं भटकते, जिन्हें पता है ये जाल है, जहां जाल दिखा भयभीत होते हैं थोड़े से, और भय जरूरी है, यहां पर हिम्मत नहीं दिखानी है कि मैं देखता हूं फिर निकल के दिखाऊंगा। ये वो महापुरुष है जो जन्म से ही वैरागी है, वीत द्वेष है, वीत राग है, वीत घृणा है, वो कभी भी मोह के वश नहीं होते, बंधन उन्हें बांध नहीं सकते। संसार की स्तुति, संसार की निंदा उन्हें स्पर्श भी नहीं करती, अनटच्ड। चार मछलियों में से हम कौन सी मछली है, चौथी। टच भी ना करे बंधन। आज से एक नए अभियान की शुरुआत, एक नया उत्साह, एक नया उमंग, एक नई खोज, अ न्यू क्वेस्ट, नई जुस्तजू, न्यू क्यूरियोसिटी। हम लेकर हृदय अधीर, प्राण में पीर, नैन में नीर चले, हम दीवाने युग युग की बंदी प्राचीरों को चीर चले, हम लिए अचल अनुराग हृदय में दाग आह में आग चले, हम लिए अनोखा एक निराला एक बेसुरा राग चले, हम लिए एक अभियान एक अरमान एक तूफान चले, हम परवाने ले दुनिया से जल मरने का सामान चले, हम लेकर एक उसास एक निश्वास एक उश्वास, जो जन्म जन्म तक बुझ ना सके हम लेकर ऐसी प्यास चले, हम एक एक अपरिचित प्राणों के से क्षण भर कर प्यार दुरार चले, हम मस्ताने इस जगदीश में कर मस्ती का व्यापार चले, हम कुचल हसरते अपनी सब ले हार जीत का दाव चले। तो फिर से नया उमंग, फिर से नया उत्साह, जो हो गया वो हो गया, अच्छा था बुरा था जो भी था वो बीत गया, अब उसके चिंतन से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य नहीं बहुत खुश हो जाओ और बहुत दुखी हो जाओ, क्योंकि जीवन अनित्य है, चीजें आ रही है चीजें जा रही है, वस्तुएं समीप आ रही है दूर जा रही है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं। इसलिए इस पल में जीना, तो आज से एक नए अभियान की शुरुआत करते हैं, अव्यक्त मुरलियों की ये सीरीज, ये क्रांति, अव्यक्त क्रांति, नूतन क्रांति, धवल क्रांति, और इस बार जो भीतर अंधकार है जो तिमिर है उसको मिटाने की ये एक ज्योतिर्मयी क्रांति। दो वर्ष की मुरलियां हम लेंगे, 74 और 76। 75 बहुत बड़ा है इसलिए उसको अगली बार, और जब भी कोई नया पुरुषार्थ किया जाता है सबसे पहला होता है एक विनम्रता का भाव, एक प्रार्थना, जब तक वो विनम्रता का भाव नहीं ये मुरलियां हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। तो एक प्रार्थना किसके प्रति, इन मुरलियों के प्रति, अपने भीतर में उठानी है जगानी है कि हे मुरलियां तुम हमारे भीतर प्रवेश करो, जो भीतर अंधकार है उसे मिटाओ। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शन। गीता में चौथे अध्याय में लिखा है जब किसी गुरु के पास जाओ तो ये सोच कर नहीं जाओ कि हम उसकी परीक्षा लेंगे, उसे कितना याद उसे पता है, इस भाव से नहीं, परिप्रश्नेन सेवया उसकी सेवा करते हुए विनम्रता का भाव धारण करते हुए उस गुरु के पास जाओ, समर्पण भाव से उसके चरणों में जाओ। उसकी सेवा करो। उपदेश शंतिते ज्ञानेन, उसके बाद वो उपदेश देगा, वो ज्ञान वो तत्व जो जीवन का अंधकार मिटाए। तो हमारे मन में भी इन सभी मूल्यों के प्रति कौन सा भाव हो? एक समर्पण का भाव, एक विनम्रता का भाव, एक आह्वान, एक पुकार, एक प्रार्थना कि हे मुरलियो, हे परमात्मा की वाणी, मेरे हृदय में कर्मस्थान दो। प्रवेश करो और मेरे भीतर जो अंधकार है उसे मिटाओ। कौन सा अंधकार है हमारे भीतर? सबसे पहला है अविद्या का अंधकार, अविद्या का अंधकार। दूसरा विकर्म का अंधकार। तीसरा पुराने संस्कार का अंधकार। चौथा नकारात्मकता का अंधकार। पांचवा व्यर्थ का अंधकार। अगला चिंता का अंधकार। अगला उदासी का अंधकार। अगला आलस का अंधकार। अगला राग द्वेष का अंधकार। अगला ईर्ष्या का अंधकार। अगला एक भ्रम का अंधकार। एक भ्रम में जी रहे हम, सोच रहे ये सत्य है, ये असत्य है, ये नित्य है, अनित्य है, ये सार है, असार है, परंतु सत्य वो है ही नहीं। एक भ्रम, एक इल्यूजन, एक डिल्यूजन, एक भ्रमित मानसिकता है। ये सब अंधकार भीतर है। प्रार्थना किससे करनी है? विनम्रता के भाव से, इन मुरलियों से कि हे मुरली, हे परमात्मा वाणी, हे भगवान की महावाणी, महावाक्य है, परमात्मा के बोल है, परमात्मा के शब्द है। एक एक शब्द अमृतमय है, एक एक शब्द हृदय के अंधकार को मिटाने वाला है। गीत सुना, आओ मिलके संकल्प करें हम, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज बिना जीवन मुमकिन नहीं रहे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें हम, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडहर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मयी बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मयी बनाना है, पर इससे पहले कि हम इस दुनिया को ज्योतिर्मयी बनाए, हमें अपने हृदय में व्याप्त इस अंधकार को मिटाना है, इस तिमिर को भगाना है, अविद्या का तिमिर, विकारों का तिमिर, विकर्म का तिमिर, पुराने संस्कारों का तिमिर, राग द्वेष का तिमिर, ईर्ष्या का तिमिर, उदासी का, चिंता का, भय का तिमिर। कौन सा भय? एक अज्ञात सा भय छिपा हुआ है। ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये ना हो जाए। निरंतर एक भयभीत चित्त है, एक भयभीत चेतना है, जबकि अध्यात्म है अज्ञात में छलांग और अध्यात्म है अभय की अवस्था। अभय आत्मा अभय अवस्था को प्राप्त कर ले, वो है अध्यात्म की परिणति, इस पथ का परिणाम। किससे डरे, किससे डरे और क्यों डरती है आत्मा? क्या ये भी अंधकार नहीं है? तो सबसे स्टेप नंबर वन क्या करेंगे, मुरलियों को मूर्तिमंत रूप में देखेंगे, मुरली मूर्त भव, मुरली मूर्त, मुरली जैसे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से प्रार्थना, उस व्यक्ति का आह्वान, उस ज्योतिर्मय पुरुष का आह्वान। मुरली एक ज्योतिर्मय पुरुष है, एक ज्योतिर्मय चेतना है, उस चेतना का आह्वान कि हे परम चेतना प्रकट हो, कहां हृदय में, मेरे मन के अंधकार मिटाने के लिए। सदियों से मनुष्य कौन सी प्रार्थना कर रहा है, वेदों में, उपनिषदों में, यजुर्वेद में कौन सी प्रार्थना है, बृहदारण्यक उपनिषद, अस्तोमा, इस असत से मुझे कहां ले चल, सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर, डेथ से इमॉर्टेलिटी की तरफ, डार्कनेस से लाइट की तरफ, ये प्रार्थना है। तो आज से एक नया संकल्प, एक नई शुरुआत, जो अब तक हुआ, हार हुई, जीत हुई, जो कुछ हुआ, न हार का गम, न जीत की खुशी, किसकी खुशियां मना रहे हो, टाइम वेस्ट। योगी अर्थात स्थिर, न राग दूषित, न मोह विमूढ़ित, शुभ मिल जाए तो उसमें राग नहीं, अशुभ मिल जाए उससे द्वेष नहीं, सुखद मिल जाए उसके प्रति आसक्ति नहीं, दुखद मिल जाए उसके प्रति द्वेष नहीं। जो आ रहा है जा रहा है, वो सब बीत जाएगा, इसीलिए सबसे पहले वो समर्पण का भाव, किसके प्रति, इस मुरली चेतना के प्रति, परमात्मा वाणी के प्रति, क्योंकि परमात्मा और उसकी वाणी एक है, परमात्मा और उसकी वाणी एक है। या फिर उसकी वाणी ही वो है, वो और उसकी वाणी अभिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है दोनों, चाहे इससे प्यार करो या उससे प्यार करो, एक ही है। और कोई कहे कि मुझे ये पसंद है पर वो पसंद नहीं है, तो मुरलीधर से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, परमात्मा से प्यार अर्थात परमात्मा महावाक्यों से प्यार, परमात्मा वाणी से प्यार। तो टोटल हमारे पास 31+18 मुरलिया है, अर्थात 49 मुरलिया। तो इस बार टोटल 3 टेस्ट होगी। पहली टेस्ट 9 तारीख को, जिसमें 7 मुरलियां होगी। बुक लाइए। लास्ट 74 टोटल मुरलियां है, कितनी 31। उसकी जो लास्ट 7 मुरलियां है, लास्ट सेवन मुरलियां, उन पर एक टेस्ट होगी, केवल 10 प्रश्न होंगे उसमें, हर दिन टेस्ट नहीं है, कई लोग टेस्ट दे दे के भी थक गए। हाँ, वो फिर भी लेंगे रिपीट, उसी में ही फिर भी उसको रिपीट ले रहे, तो सात, एक ही टेस्ट सात मुरलियों पर 9 तारीख को, और फिर दूसरी टेस्ट सीधा 18 तारीख को, जो सेकंड मुरली है, सेकंड ईयर है 76 की, उसकी जो लास्ट 7 है उस पर, और फिर बची कितनी 35, उस पर एमएट, उसमें 25 तारीख को भट्टी पूरी होगी, 22 तारीख को, और टेस्ट 2 दिन का गैप, और फिर 25 तारीख को टेस्ट। जब तक परीक्षा नहीं तब तक पढ़ाई नहीं होती है, परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई जब होती है, परीक्षा जब होती है, तब सारे नसें खुलने लगती है चेतना की, जन्म जन्म से सोई हुई चेतना जाग उठती है, और फिर उसमें भय भी होता है, उसमें इज्जत का सवाल होता है, उसमें कंपटीशन होती है। डेली एग्जाम दे दे के कई लोग थक गए हैं, और कईयों ने कहा अभी इस बार हम नहीं देंगे डेली। हमने कहा ठीक है, तो 2 टेस्ट रखिए, तो 7 दिन की मुरलियाँ, और जो रीडर्स क्लब होगा उसमें ये 7 मुरलियाँ रिवाइज होगी, और जो बची हुई 35 मुरलियाँ है वो यहाँ क्लास में रिवाइज होगी अगले 21 दिनों तक, और जो फाइनल टेस्ट होगी वो उन 35 मुरलियों पर होगी, और ये जो छोटी छोटी टेस्ट है 2 वो उसमें होगी। जेके, एनके से इस बार कर दिया जेके तो जेके 1 और जेके 2, और फिर रात लास्ट में एमएट 5। तो अभी आते हैं आज की मुरली की तरफ, उससे पहले भट्टी के नियम। तो जब भी कोई भट्टी होती है, जब भी कोई रिट्रीट होती है, सबसे पहले नियम निर्धारित होते हैं। तो इस भट्टी का सबसे पहला नियम है मेडिटेशन जर्नल। तो एक जर्नल बनाएंगे, इस तरह का जर्नल होगा, और उस जर्नल में इसको स्टिक करेंगे, नीचे लिखा है मेडिटेशन जर्नल। इन 21 दिनों में वो जर्नल एक छोटी डायरी हो सकती है, पर अच्छी वाली डायरी हो, सारे दिन भर जो दिव्य अनुभव हुए, रात को सोने से पहले 21 दिनों तक 21 दिनों के अनुभव उसमें लिखेंगे, उस दिन का उसी दिन रात में। अगर भूल जाए या टाइम ना मिले तो अगले दिन अमृत मिले के पहले या बाद में। तो इसको कहा जाता है मेडिटेशन जर्नल। जब भी कोई रिट्रीट की जाती है तो वहां पर इस तरह का जर्नल लिखाने की प्रथा होती है। जैसे आज से रिट्रीट चालू, तो ये 21 दिन हम एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक जो हुआ वो भूल जाओ, अब तक जो हुआ पास फेल, पढ़ा नहीं पढ़ा, गिरे उठे, जो था वो खत्म, अभी नया, सब कुछ नया। आज जो अनुभव होगा पूरे दिन भर इस भट्टी का, उसका अनुभव शॉर्ट में उसमें लिखना है, तो वो होगा, उसको कहा जाता है मेडिटेशन जर्नल। ऐसा ये भेजेंगे, इसका प्रिंट निकाल के अपनी जो डायरी है, अपना जो बुक है, उस पर उसको चिपका देना है, और लिखना है अंदर day 1/21। तो day 1 का क्या अनुभव है रात को सोने से पहले, step 1। दूसरा है नियम। जब भी साइलेंट रिट्रीट होती है, हर प्रकार की, बहुत प्रकार की साइलेंट रिट्रीट है, उस रिट्रीट रूम में नियम 1 होता है मौन का। तो यहां पर 21 दिन तक किसी भी प्रकार की गॉसिप नहीं करनी है बैठकर। अगर गॉसिप की, एक्सपल्शन फ्रॉम द भट्टी, एक्सपल्शन अर्थात भट्टी से आउट, गॉसिप अर्थात क्या, गॉसिप अर्थात परचिंतन, गॉसिप अर्थात ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, गॉसिप अर्थात बैठ के बातें करना, गॉसिप अर्थात इधर उधर की बातें करना, गॉसिप अर्थात हमें आत्मदर्शन करना है, और परदर्शन, आत्मदर्शन में सबसे बड़ी बाधा है। हमें तो आत्ममुखी होना है, स्वमुखी होना है, अंतर्मुखी होना है, भीतर के जगत में प्रवेश करना है, भीतर के अंधकार को समझना है। ये है क्या, कहां से आया है ये तिमिर, कैसे इस घटाटोप अंधकार को हम मिटाए। जब इतनी बड़ी ज्योतिर्मय क्रांति हमें लानी है तो हाउ कैन वी वेस्ट अवर टाइम इन गॉसिप। स्टॉप सिपिंग गॉसिप, डू नॉट सिप गॉसिप। गॉसिप अर्थात छरमोई छगमोई, गॉसिप अर्थात इधर उधर की बातें, गपशप, चैट, और वो गॉसिप में लिखना भी आएगा, एसएमएस भी आएगा, मैसेजेस भी आएगी, वो सब कुछ गॉसिप्स नहीं, क्योंकि गॉसिप्स आत्मा की हानि करता है, गॉसिप्स टाइम वेस्ट करता है। जितना हो सके मौन में रहना है, मौन योगी का सबसे बड़ा मित्र है। चुप, आंखें बंद करके बैठे रहो, या योग करते रहो, या मुरली पढ़ते रहो। रूल नंबर 3, साइलेंट नेचर वॉक। 24 घंटे में एक बार प्रकृति के सानिध्य में नेचर वॉक। जरूरी नहीं है कि 24 घंटे बारिश ही चालू है, जैसे अभी आबू में चल रही है, बाहर तो शायद बारिश नहीं होगी, तो प्रकृति के सानिध्य में वॉक करना है। परंतु वॉक कैसी हो, साइलेंट हो। अगर दो लोग जा रहे हैं तो जो बात करना है पहले ही कर लो, चलने के बाद बातें नहीं होगी, चुप। पर एक बार वॉक तो करनी है, साइलेंट वॉक, वो छोटी हो सकती है, लघु, दीर्घ, कैसी भी। और उस वॉक करते समय जितना हो सके नजर नीचे, नजर नीचे। योगी का ये स्वभाव ही है, नजर नीचे, जितना आंखें यहां वहां जाएगी। हाँ, यदि प्रकृति के सानिध्य में है और एकांत में है तब प्रकृति का अवलोकन करो, प्रकृति को देखो, एक एक चीज क्या कहती है, एक एक पत्ता। और रात में डायरी में एक और चीज लिखनी है, जिसको कहते हैं, एक चार्ट होता है जो यूजुअली भरा जाता है नेचर वॉक के बाद, स्कैवेंजर चार्ट। उसमें हमने कौन कौन सी वस्तुएं देखी, उसमें शॉर्ट में वो लिखते हैं। जैसे कि यहां पर उदाहरण के लिए क्या देखा, लीफ, फ्लावर, बर्ड, एंट, स्क्विरल, गिलहरी देखी, मधुमक्खी देखी, भालू, क्लाउड, ट्री, स्पाइडर, लीफ, फ्लावर, गार्डन, स्ट्री, झाड़ का खूंट, स्पाइडर वेब, ट्री, लॉग, चीटिया, पत्ते, डस्ट, जो जो चीजें हमने देखी थी आज चलने के बाद, रात में सोते समय नेचर स्कैवेंजर हंट, स्कैवेंजर हंट, या फिर नेचर वॉक, और वहां पे लिखना है कि हमने ये वस्तुएं देखी। ये मेमोरी ट्रेनिंग भी है कि जो हमने देखा वो हमने जस्ट नोट कर लिया। क्या क्या देखा, अच्छा वहां पत्ते गिरे थे, सूखे पत्ते थे या गीले पत्ते थे, कुछ भी, जो जो याद आता है ऐसी 10-15 चीजें लिख देनी है। जो नेचर वॉक में हमने देखा था वो कुछ चीजें लिख देनी है, ये रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 और सबसे पावरफुल, इंटेरियोराइजेशन 4, आंतरिकरण। अर्थात न पढ़ना है न लिखना है, मुरली छोड़कर, होमवर्क छोड़कर, ऑफिस रिलेटेड वर्क छोड़कर, कोई भी किताब नहीं पढ़नी है मुरली के अतिरिक्त, नो एक्सटर्नल रीडिंग, इवन स्पिरिचुअल बुक्स भी नहीं, केवल मुरली। क्योंकि पढ़ना एक डिस्ट्रैक्शन है एक रीति से। यह नियम कब तक के लिए है, 21 डेज के लिए। पढ़ना है तो केवल मुरली, और पढ़ना है तो ऑफिस रिलेटेड, जो काम रिलेटेड आपका काम है, जो सेवा रिलेटेड वर्क है, ड्यूटी रिलेटेड। स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई, मेडिकल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, सीए का स्टूडेंट है, जो भी है, वो वर्क रिलेटेड, ड्यूटी रिलेटेड, काम से संबंधित जो है वो है। पर यहां पर लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत आदत है, जैसे हम खुद. तो नो एक्सटर्नल रीडिंग, केवल पढ़ना है तो मुरली. और इतनी छोटी मुरली है, जितनी ज्यादा प्यास, एक दिन में पढ़ लो इसको पूरा, ऐसी तीव्र प्यास हो, ऐसे कैसे फेल होंगे. और जो इन दो में फेल, जेके वन और जेके टू में, वो एमएट फोर से आउट, एमएट फाइव से, उसको इसमें एंट्री नहीं होगी. एंट्री क्राइटेरिया, अगर इन दो में फेल है पासिंग चाहिए. इतनी छोटी छोटी मुरलियां है और सात मुरलियां है, और उसके लिए टाइम दिया जा रहा है 8 दिन, और रीडर्स क्लब होगा रोज, जो आज से चालू होगा. जिसने नहीं किया है रीडर्स क्लब वो कौन है? त्रिवेणी बहन. आज का रीडर्स क्लब दोनों मिलके एक चालू करेगा, एक एंड करेगा. और जो चालू करेगा 2-3 दिन के बाद वो इधर आएगा, इधर जाएगा. एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे एक ही व्यक्ति नहीं रहेगा, इधर से उधर अल्टरनेट करते रहना है. स्टार्ट करने वाला एक दिन, फिर एंड करने वाला दूसरे दिन. तो आज ये मुरली तो छोड़ेंगे, पर इसके अगले वाली जो मुरली है, अगले 7 दिन एक एक मुरली लेंगे, अगले 14 दिन 2-2 मुरलियाँ लेंगे. तो 28 और 7 35, तो ये 35 मुरलियाँ यहाँ कवर होगी, और बाकी जो मुरलियाँ है वो आप खुद पढ़ेंगे. 7+7 कितनी हुई? 14. 7 के बाद में टेस्ट होगी 9 तारीख को, और 7 के बाद में टेस्ट होगी 18 तारीख को. ठीक है, तो ये है 4 नियम. तो 4 नियम में चौथा नियम कौन सा है? कुछ भी एक्सटर्नल पढ़ना नहीं है, और कुछ एक्सटर्नल लिखना भी नहीं है. लिखेंगे होमवर्क वाली चीज, और पढ़ेंगे मुरली बस. तो सबसे पहला मेडिटेशन जर्नल बनाएंगे आज एक, उसमें रात में अपना अनुभव लिखना है पूरे दिन भर का, जो सुंदर अनुभव हुआ है. उस दिन भी क्लास में कहा था, जो हमको बहुत सुंदर अनुभव होते हैं उनको कैच करना है, उनको याद करना है और उनको लिखना है. क्योंकि अनुभव बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है, वो खो जाते हैं. और याद क्या रहता है? नेगेटिविटी. याद क्या रहता है? जो नेगेटिविटी 10 साल पहले एक व्यक्ति ने हमारा अपमान किया, आज भी अगर बैठ जाओ और उसको याद करो क्या क्या बोला था, वही आवेश, वही जोश और वही दुख, वही उद्वेग आ जाएगा वापस, वैसी की वैसी स्थिति. 10 साल पहले क्या अनुभव हुआ था वो तो याद ही नहीं अमृत वेला, क्योंकि लिखा ही नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका. तो आज सारे दिन भर में अमृत वेला क्या अनुभव हुआ, क्लास में क्या अनुभव हुआ, दिन भर क्या अनुभव हुआ, नेचर वॉक में गए, एकांत में बैठे थे कि अचानक से टचिंग हुई, कोई ऊपर से जैसे आसमान से कोई टचिंग आ गई, बहुत सुंदर ऐसा संकल्प आया जो आज तक कभी आया नहीं था. इतना श्रेष्ठतम संकल्प उत्पन्न हो गया हृदय में. उसको लिख लो, वो खो जाएगा, वोलेटाइल है, नोट करके रख लो, रात में लिखना फिर. तो फर्स्ट मेडिटेशन जर्नल, नो गॉसिपिंग. लक्ष्य रखना है संपूर्ण मौन का, अपने काम से काम. ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसा नहीं ड्यूटी में मौन धारण नहीं करना है. ड्यूटी में जो बोलना है, जितना बोलना है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता है, वो सब करना है उसमें. पर जैसे ड्यूटी आवर्स पूरे हो गए, फिर वो जो चालू होता है, और सुनाओ, और फिर आज भोग में क्या बन रहा है उधर, वो वाला जो डिस्कशन है वो वेस्ट है. किसी की पर्सनल बातें इंटरफियर नहीं करना है. नो इंटरफियरेंस, नो गॉसिप्स. तीसरा, नेचर वॉक. अगर बारिश आ रही है तो छत पे जाओ, अगर छत या फिर घर से ही देखो, अनुभव करो प्रकृति का, कि मैं प्रकृति में हूं. क्योंकि प्रकृति हमें विराट के समीप ले जाती है, प्रकृति स्वयं विराट है. प्रकृति हमें सभी रोगों से मुक्त करने की क्षमता रखती है, प्रकृति में हीलिंग पावर है. विटामिन एन, हमें केवल 2 ही विटामिन की आवश्यकता है, एक विटामिन एन एंड एक विटामिन यू, अर्थात बाबा. आई जस्ट नीड यू, यू आर माई विटामिन यू. कौन सा विटामिन? यू मतलब तुम, तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. तुम चाहिए बस, एक विटामिन यू और एक विटामिन एन, नेचर। ए भी आ जाता है, बी भी आ जाता है, कितना वो तो सब बहुत बड़ा बना सकते हो, और जो यूज किया जाता है वर्ड वो है आई जस्ट नीड यू, यू आर माई विटामिन यू। चौथा, इंटीरियराइजेशन, जितना हो सके भीतर जाना है, अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि अंधकार भीतर है। ये ऊपर ऊपर से सुन के कुछ होने वाला नहीं है, ना कोई क्लास सुन के कुछ होने वाला है, ना कुछ लिख के कुछ होने वाला है, ना कुछ पढ़ के, कितनी भी मुरलियां पढ़ लो परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होगा जब भीतर प्रवेश करेंगे, भीतर झांकेंगे, अपने गिरेबान में देखो क्या है। ये सब अंधकार है, भय है वहां, तो वही विकर्म है, वही पाप है, वही पाप, वही पश्चाताप, वही संस्कार, वही बंधन, वही जाल बिछा हुआ है। मुझे इससे बाहर निकलना है बस, चौथे नंबर, तीसरे नंबर की मछली, कैसे भी करके बाहर निकलना है। छटपटाओ, तड़प हो, प्यास हो, डिवाइन डिस्कंटेंट, असंतोष, नहीं नहीं नहीं, निकलो इससे बाहर। तो आज की जो मुरली है अभी, उस पर ये चार रूल्स है भट्टी के, आज की जो मुरली है उसमें एक चार्ट है, जो चार्ट यहाँ लिखा नहीं गया है, पर ये चार्ट हम ग्रुप में भेजेंगे, तो आपको उस चार्ट को भरना है। उस चार्ट में 12 प्रश्न है। प्रश्न पहला, सेना का नाम क्या है? ऐसा चार्ट है ये, रूहानी सेनानियों का निराधार की निराधार अभ्यास योजना। इसका ना टाइटल दिया है निराधार, रूहानी सेनानियों की निराधार अभ्यास योजना। तो उसमें ऐसी 12 बातें हैं। सबसे पहला, ये एक तरफ लिखा हुआ है और आपको अगले तरफ लिखना है। तो सबसे पहली स्टेप है मुरली को पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पढ़ना, आगे से पढ़ना, दाएं से पढ़ना, आगे से, पीछे से, बीच से, अगल से, बगल से, कोई कोना छूट ना जाए, कोई शब्द आंखों से ओझल ना हो जाए, हर तरफ से उसको देखना, सीधा देखना, उल्टा देखना, सीधा देखना, शीर्षासन करके देखना कि कैसी दिखती है मुरली, उसके हर रूप को, उसके हर रंग को देखना, आर पार देख लेना, इधर से उधर से, तिरछी नजर से देखना, उल्टी नजर से देखना, दाई नजर से, बाई नजर से, चलते फिरते देखना, उठते देखना, जागते देखना, सोते हुए भी देखना, आंखें बंद करके भी देखना। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें सेना। तो हम कौन है? शक्ति सेना। दूसरी लिखा है शक्ति सेना का अर्थ क्या है? शक्ति सेना अर्थात जिनमें शक्तियां भरी हुई है। तीसरा है तुम्हारा नाम क्या है? रूहानी वॉरियर्स, रूहानी सेनानी, रूहानी योद्धे। तीसरा है तुम्हारी महिमा क्या है? चौथा, पांचवा है तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा वही कर्तव्य है जो बाप का कर्तव्य, तुम्हारा वही काम है जो बाप का काम है, तुम्हारा काम है बाप का नाम वाला करना। कला कौन सी है तुम्हारी? तुम्हारी एक मिनट भी, एक क्षण भी, एक सेकंड भी गिरती कला ना हो, रुकती कला ना हो, ठहरती कला ना हो, तुम्हें तो निरंतर चढ़ती कला में रहना है। तुम रुके तो संसार रुकेगा, क्योंकि तुम इंजिन हो, तुम गाइड हो, तुम पंडे हो। आपके पीछे कौन है? सारा संसार खड़ा है। सोचो ट्रैफिक है बहुत और उसमें एक गाड़ी रुक गई, उसके पीछे सारी रुक जाएगी। ट्रेन जा रही है, इंजन ही रुक गया, सब रुक जाएंगे। पार्ट का महत्व क्या है? तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? और तुम्हारी रॉन्ग सोच क्या है? तुम्हारी गलत सोच क्या है? गलत सोच क्या है कि बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं, क्रिएट एन इमरजेंसी, अभी, आज, तुरंत, अभी एक घंटे के अंदर ही पढ़ लेना मनी भाई पूरी की पूरी 74 की। एक सेकंड का ऑर्डर प्रोग्राम इशारा, बाबा ने कहा है एक सेकंड का ऑर्डर आएगा। मिलिट्री में क्या होता है? एक सेकंड, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, तीनों तीन में देने चलेंगे, सलामी दे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। वहां पे चिंतन नहीं करना है। कोई अगर पूछे एक्सक्यूज मी सावधान क्यों, इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ज्यादा तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा जाना नहीं. देर इज नॉट टू रीजन बाय, देर इज बट टू डू एंड डाई. आर्मी का नियम क्या है? बस करो और मरो, पूछना मत क्या क्यों कैसे. हम रूहानी योद्धे है, रूहानी आर्मी है. मुरली में कहा है आत्म अभिमानी बनो, दैट्स इट. एक सेकंड में ये ऑर्डर है, ये इशारा है, ये डायरेक्शन है, ये अभ्यास है. स्व का प्रोग्राम स्व बनाओ, स्व की उन्नति स्व करो. अनादि प्रोग्राम तुमको मिला हुआ है, कौन सा? इधर आगे लिखना है, हम उत्तर नहीं बता रहे हैं. ये प्रश्न जैसे है, आगे आपको लिखना है इस कॉलम में. आज ये होमवर्क है, आज का होमवर्क नंबर वन. अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है, तुम भट्टी में हो, निरंतर हो, हर वक्त हो. वक्त शब्द बोला है बाबा ने उसमें, हर वक्त तुम भट्टी में हो. भूलना ही नहीं है कि मैं कहां हूं. ज्वाला भवन में बैठे हो, आग लग रही है कि नहीं? आग की लपटें लगती रहनी चाहिए, सेक लगते रहना चाहिए. बिना धक्के के परिवर्तन नहीं होता है, धक्का लगना चाहिए. ऐसा इस मुरली में एक शब्द आया है और जो बहुत पावरफुल है. कौन सा शब्द है वो? एक ही लाइन है, एक ही लाइन, बट वेरी स्ट्रॉन्ग. अभ्यास निराधार का होना चाहिए. किसका? निराधार का. किसी को साथी नहीं बनाना है तीव्र पुरुषार्थ में, अकेले. ये मार्ग अकेले का है, कई बार कहा है. किसी को साथी, हाँ अगर बनाओ भी तो उस पर निर्भर नहीं रहना है फिर, नहीं तो एक दूसरे में फंस जाएंगे. एक बार विदेशियों का क्लास चल रहा था यहीं पर, और वो डिस्कशन चल रहा था, तो हमने उनसे ऐसे ही कहा था, जोश जोश में एक डिस्कशन ग्रुप होना चाहिए ज्ञान का, जिसमें आप लोग बैठ के डिस्कशन करो. तो एक विदेशी बहन ने पूछा, अगर जिससे डिस्कशन कर रहे उसमें मोह हो गया तो? मैंने कहा छोड़ो डिस्कशन, अकेले करो. तो अभ्यास किसका चाहिए? निराधार का. इस मुरली में कहा है, ऐसा नहीं कि तीन दिन की भट्टी है इसलिए हम करेंगे. अपनी भट्टी खुद करो, स्व उन्नति करनी है, स्वयं स्वयं की उन्नति, स्वयं स्वयं सब करना है. किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है, किसी चीज के लिए निर्भर नहीं रहना है. जो करना है खुद करो और आगे बढ़ जाओ. किसी के लिए रुके तो गए. महात्मा गांधी को खत आया था एक व्यक्ति का कि मेरी पत्नी ब्रह्मचर्य नहीं धारण करना चाहती है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो करना है. क्या मैं उसके लिए रुकू ताकि उसकी अंदर से ज्योति जगे? उत्तर था बिल्कुल नहीं. आप आगे निकल जाओ, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जुड़ना है वो जुड़ेगा. किसी के लिए रुकना नहीं है यहां पर. यह तो धधकती अग्नि पर चलने का मार्ग है, ब्रह्मचर्य का मार्ग है, जीवन ऊर्जा में आगे बढ़ने का मार्ग है, जीवन शक्ति का नाश करने का मार्ग नहीं. तप करने का मार्ग है, तपस्वी बनने का मार्ग है, जलने का मार्ग है, प्रतिपल जलने का मार्ग. एक एक क्षण, एक एक क्षण जीवन का उन्नति का क्षण हो. एक पल भी तुम नहीं रुक सकते, इस मुरली में बाबा ने कहा है. तुम रुके कि सारा संसार रुकेगा, तुम ठहर गए तो सारा संसार ठहर जाएगा. यू आर इंजिन. तो इस मुरली से हम ऐसे सात शक्तिशाली स्वमान निकाल रहे हैं. सबसे पहला स्वमान एक एक को दे देंगे. तो सबसे पहला सुशील भाई, पहला स्वमान है आई एम स्पिरिचुअल वॉरियर, वॉरियर. दूसरा स्वमान आई एम पावरफुल, रविनेश भाई आई एम पावरफुल. तीसरा पुरुषोत्तम भाई आई एम नॉलेजफुल. इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बाप नॉलेजफुल और बच्चे अनपढ़, शोभता है क्या? भगवान की इंसल्ट. पिताजी आईएएस ऑफिसर और बच्चा दसवीं नापास प्यून ऑफिस में झाड़ू लगा रहा है बाप के सामने. पिताजी डीन कॉलेज के, और ये चौथा रिपीट चल रहा है अभी. आई एम नॉलेजफुल. अगला विठ्ठल भाई आई एम गाइड, बाबा ने कहा तुम पंडे हो, तुम गाइड करने वाले हो दुनिया को। निखिलेश भाई, आई एम इंजिन, आप कौन हो? इंजिन, आपके पीछे देखो कौन है, देखो पूरी दुनिया है। क्या कहा मुरली में, तुम्हारे पीछे सारी दुनिया है, यू आर इंजिन। अगला अरविंद भाई, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बाबा ने कहा यह तुम्हारी जिम्मेदारी, अपने पार्ट को जानो, अपने महत्व को जानो, अपने पार्ट के महत्व को जानो। तुम ही भूल जाओ तो फिर कैसा चलेगा? प्राइम मिनिस्टर ही भूल जाए, आज मुझे करना क्या है, आज मेरा क्या है? गार्डन जाओ क्या घूमने? फिर उसको याद दिला आपकी मीटिंग है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। और लास्ट मनी भाई, आई एम सेल्फ रिलायंट, अर्थात निराधार। अभ्यास निराधार का होना चाहिए, स्व उन्नति स्वयं करो, स्व का प्रोग्राम स्वयं बनाओ। आई एम सेल्फ रिलायंट। तो ये सात हो गए। सबसे पहला एक एक बोलेगा जिस जिसको दिया है। स्टार्ट। आई एम, सब बोलेंगे साथ में, आई एम स्पिरिचुअल वॉरियर, मैं रूहानी योद्धा हूं, रूहानी सेनानी हूं, मैं रूहानी सेनानी हूं, आई एम स्पिरिचुअल वॉरियर। दूसरा इनके पीछे बोलेंगे, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। बाबा ने कहा है कि बाप है पावरफुल, सर्वशक्तिवान, और बच्चे शक्तिहीन, बच्चे शक्ति के लिए भीख मांग रहे। पिताजी का महल है और बेटा भिखारी, कटोरा लेके भिक्षाम देही, सुबह सुबह उसी महल के बाहर भिक्षा अपनी दुकान खोल रखी है। अगला आई एम नॉलेजफुल। अगला आई एम गाइड, मैं पंडा हूं, सारे संसार के लिए गाइड हूं मैं, मुझे संसार को गाइड करना है। जो संसार को दिशा दिखाने वाले वो स्वयं दिशाहीन कैसे हो सकते, जिसे संसार को दिशा दिखानी है वो स्वयं दिग्भ्रमित कैसे हो सकते हैं? हमें तो संसार को ज्योतिर्मय बनाना है। अगला आई एम एन इंजिन, पीछे एक बार देखो अपने अपने सब लोग, देखो कौन है, दिख रहे हैं दुनिया के लोग पूरे डब्बे? आई एम एन इंजिन। अगला आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगला आई एम सेल्फ रिलायंट, आई एम सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट अर्थात आधार, अभ्यास निराधार का हो, किसी को भी आधार नहीं बनाना है, और जो आधार बने हैं उनको धीरे धीरे भूलते जाओ, और जिन्होंने आधार बनाए अभी आधार मत लो। हमको याद है शुरुआत में जब हम जैसे क्लास चालू किया था तो कई लोगों से पूछते थे, ये टॉपिक है आपका क्या चिंतन है, तो आप थोड़ा लिख के भेजना, इसको भेजते थे उस बहन को, इस बहन को, तो कई सारी बहनें अपना अपना चिंतन लिख के भेजती थी, और जब क्लास कराते थे तो उनकी पॉइंट आती नहीं थी, तो फिर गुस्सा कि हमने इतना चिंतन लिख के भेजा, वो कहाँ, तो बोला ही नहीं आपने, तो फिर सोचा ये तो बहुत बड़ा बंधन है, मुझे छोड़ना है इस बंधन को भी, क्योंकि उन्होंने अपना चिंतन भेजा और फिर क्लास सुनी और क्लास में उनकी एक पॉइंट नहीं आई, तो बहुत दुखी और उदास और नाराज। तो हमने कहा यह भी एक रूहानी बंधन है, इसको भी छोड़ो। अरे जो पॉइंट आपने दी है उसी के आधार पर आगे का चिंतन डेवलप हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि कृतज्ञता का भाव नहीं है, और वो सामने बोलते समय वही उनकी दी हुई याद आया, ऐसे जरूरी थोड़ी ना है, वो हम उस टाइम पे कुछ और याद आ जाता है तो हम वो बोलते हैं, पर यहाँ तो लोग ही नाराज हो रहे, तो हमने नई माया का साक्षात्कार हुआ कि मेरा कहाँ है, मेरा चिंतन कहाँ है, जो आपने बोला था रात को वो कहाँ है, आप फिर पूछा क्यों? तो ये पहला होमवर्क है, वो 12 पॉइंट्स, और दूसरा होमवर्क है इसको याद करना, कल हम ये पूछेंगे, ये 7 पॉइंट्स। आई एम अ स्पिरिचुअल वॉरियर, आई एम पावरफुल, आई एम नॉलेजफुल, आई एम गाइड, आई एम एन इंजिन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेल्फ रिलायंट, मैं आत्मनिर्भर हूं। तो ये छोटी सी मुरली है, इसको पढ़ना है और ये दो चीजें करने हैं, और होमवर्क नंबर अपना भट्टी का रूल नंबर 1 मेडिटेशन जर्नल बनाना है, रूल नंबर 2 गॉसिप्स बिल्कुल नहीं करनी है, चुप रहना है, अंदर अंदर याद करो कोई चीज, कोई मुरली। तीसरा नेचर वॉक करो, और वो भी साइलेंट होनी चाहिए। और लास्ट इंटीरियराइजेशन, भीतर भीतर भीतर, हमें भीतर जाना है, बाहर बहुत देख लिया, सुन लिया, कर लिया, अब नहीं। तो आओ मिलके संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ओम शांति।
आओ मिलके संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है, वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे, वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को